जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय नित्य लीला प्रविष्टो मिष्टुपाद परमहंस शिष्य 108 श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। नमो मुष्टिपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वित तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतय देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मेरा नाम रूप अनुग्रह दास है। मैं आप जितने वरिष्ठ भक्त यहाँ पर सबसे आज्ञा चाहता हूँ कि कुछ बोलने का साहस कर सकूँ। अगर ठीक लगे तो मेरे गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को धन्यवाद, कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आज हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध का 15वां अध्याय सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश का 68वां 68 श्लोक पढ़ रहे हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए। यथा हि यूयम् नृप देव दुस्त्यजा आपद गुणाद उत्तरत आत्मनः प्रभो यत पाद पंके रुह सेवया भवान हर्षि निर्जित दिग्गज क्रतून यथा हि यूयम् नृप देव दुस्त्यजात् आपद गुणाद उत्तरत आत्मनः प्रभो यत पाद पंके रुह सेवया भवान हर्षि निर्जित दिग्गज क्रतून यथा हि यूयम् नृप देव दुस्त्यजात् आपद गणात दुत्तरत आत्मनः प्रभो यत पाद पंके रुह सेवया भवान हर्षि निर्जित दिग्गज क्रतून। जिस प्रकार ही निस्संदेह यूयम तुम सभी पांडव नृपदेव हे राजाओं मनुष्यों तथा देवताओं के स्वामी दुस्त्यजात अजेय आपत संकटपूर्ण स्थितियां गणात सबसे उत्तरत बच निकले आत्मनः अपना प्रभो श्री भगवान का यत पाद पंकेरुह जिनके चरण कमल सेवया सेवा करने से भवान आपने आहारशीत संपन्न किया निर्जित हराकर दिग्गज हाथियों के समान अत्यंत शक्तिशाली शत्रु क्रतून अनुष्ठान अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर तुम सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और इस प्रकार अपने यज्ञ हेतु सामग्री एकत्रित की है। भगवत कृपा से तुम भव बंधन से छूट जाओगे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को सामान्य गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए श्री नारद मुनि से पूछा कि गृह मूढ़ धी गृहस्थ जीवन में फंसकर अल्पज्ञ बना रहने वाले व्यक्ति का उद्धार किस प्रकार हो सकता है। श्री नारद मुनि ने यह कहते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया, तुम सुरक्षित स्थिति में हो क्योंकि तुम अपने समस्त परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन चुके हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था और बड़े बड़े राजाओं तथा कभी कभी देवताओं के द्वारा भी उत्पन्न किए गए संकटों से अपने आप को बचा लिया था। इस प्रकार वे इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किस प्रकार सुरक्षित रहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को पांडवों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने यह दिखलाया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बचा जा सकता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से इस भौतिक जगत में शांति पूर्वक रह सकता है और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस जा सकता है। भौतिक जगत में पद पद पर विपत्तियां हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषां। फिर भी यदि कोई निसंकोच भाव से श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करके उसी में रहता है तो वह सरलता से अज्ञान सागर को पार कर सकता है। समाश्रिताये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। भक्त हेतु यह विशाल अज्ञान सागर गाय के खुर की छाप में जमे पानी के तुल्य बन जाता है। परम भक्त विभिन्न प्रकार से ऊपर उठने के प्रयास की चिंता न करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के दास के सुरक्षित पद पर बना रहता है और इस प्रकार उसका जीवन निस्संदेह शाश्वत रूप से सुरक्षित रहता है। सो अनुवाद हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। फिर हे राजा युधिष्ठिर तो सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और इस प्रकार अपने यज्ञ हेतु सामग्री एकत्र की है। भगवत कृपा से तुम भव बंधन से छूट जाओगे। जाए सो क्या हो रहा है यहां पर, ये पूरा सातवां स्कंध जो है ये श्री नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच का संवाद है। इसमें प्रहलाद महाराज की पूरी कथा बताई गई है। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम के बारे में बताया, ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, ब्राह्मण के बारे में बताया, संन्यास आश्रम के बताया। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, लेकिन हम जो गृहस्थ हैं, अपने को उन्होंने गृढ़ मूढ़ धी बताया, मूढ़ माने बेवकूफ मूर्ख। तो मतलब उनका कहने का यह था कि जो हम गृह गृहस्थी में फंस जाते हैं तो हम कर्मी बन जाते हैं, कि हम सिर्फ इस वजह से, इस कारण से काम करते हैं कि हमको कोई भौतिक फल मिले, कुछ पैसा मिले, जायदाद मिले, संतान मिले, पत्नी पति मिले और इस तरह से आदि आदि। तो उस चक्कर में फंस कर फिर हम अपने आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इस संसार में पड़े रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि हम ऐसे कैसे बचे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी युधिष्ठिर महाराज ने कि इस संसार में तो हर पद पर विपत्तियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को 8वें अध्याय के 15वें श्लोक बताया कि ये संसार जो है विपत्तियों से भरा हुआ है। माम उपेत्य पुनर्जन्म कहे दुखालयम तो अशाश्वतम। ये जो संसार है दुखालय है, माने कि दुखों से भरा हुआ है, दुखों का घर है और अशाश्वत तो ही है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं, तो अशाश्वत है। तो कहने का मतलब, जैसे कि मेरी माता जी कहती थी कि अगर किसी काजल की कोठरी में घुसोगे तो चाहे जितना सावधान रहो काजल तो लग ही जाएगा बदन पर। इसी तरह से इस संसार में हम जो भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन हैं, विपत्तियां तो आएंगी ही आएंगी। मनुष्य की बात हम क्या करें, भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं आए तो कितनी विपत्तियां उनको सहनी पड़े। जन्मदिन के अवसर पर ही उनको अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। 6 दिन के थे, पूतना ने आक्रमण कर दिया। 3 महीने के थे, त्रिकरासुर आ गया। 1 साल के थे, तृणावर्त आ गया। उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़े हो गए थे तो हर दिन नाश्ते के बाद, लेकिन लंच के पहले कोई ना कोई दाना वो आकर आक्रमण करता था। हर रोज उनके साथ ही होता था। वो सब छोड़िए, वो जिनके लिए कहते हैं ईशावासस इदम सर्वम, उनका सब कुछ है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो मक्खन चुरा लेते हो। अरे भाई उन्हीं का तो है, लेकिन चुरा लेते हो। वो तो फिर भी कोई बात नहीं, जब बड़े हुए द्वारका में चले गए उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि तुमने तो सिमंतक मुनि चुरा ली। अगर जो भगवान जिनका सब कुछ है उनके ऊपर आरोप लगाया, नहीं तुमने तो चुरा लिया। भगवान राम आए थे कृष्ण के पहले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस दिन उनको बताया गया कि अब तुम अगले दिन राजा बन जाओगे, उनको कहा गया नहीं, राजा बनने के बजाय 14 साल के लिए वनवास। वहां गए, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया रावण के से। कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं जब आते हैं उनको इतनी विपत्तियां पड़ती, तो हम लोग कौन है। तो भगवतम में 10वें अध्याय में उनका पदम पदम जत विपदाम न तेषम, ये तो संसार में हर पद पर विपत्तियां आनी ही आनी है, ये तो हमको मतलब मंजूर करना पड़ेगा, इसमें कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता, हम क्या करें, विपत्तियां बस सहते रहे या कुछ करें उसके बारे में। हम कुछ कर भी सकते हैं, यानी अपने से नहीं कर सकते। उदाहरण दिया जाता है कि अगर हम किसी समुद्र में गिर पड़े, अपने बल से समुद्र को हम पार नहीं कर सकते, चाहे जितने अच्छे हम तैराक हो, अपनी छोटी सी नाव हो, तब भी हम अपने तरीके से अपने बल से उसको खे कर किनारे नहीं आ सकते। किसी कुत्ते के दुम पकड़ कर नहीं आ सकते, किसी और की सहायता से नहीं आ सकते। सहायता देकर वही, जैसे बड़ा जहाज हो, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, समासता ये पद पल्लव महत् पदम पुनि यशो मुरार। उन्होंने कहा जो भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेता है उसका क्या होता है, भवाम्बुदि, गोवत्स पदम 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 जत विपदाम नतेशा, उसके लिए बड़ा संसार जो है एक गौ के खुर के समान रहता है। गौ का खुर इससे बड़ा नहीं होता। तो पूरा समुद्र प्रशांत समुद्र समझ लीजिए आप, अटलांटिक ओशन समझ लीजिए, वो इतना बड़ा हो जाता है, उसको आलांग करना बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ उनके लिए जो भगवान की शरण ले लेते हैं। वही बात भगवान ने अर्जुन को भी बताया था भगवद गीता में 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा था कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव जय प्रपद्यन्ते माया एतान तरन्ते। उनका मेरी जो माया है महामाया है उससे जीतना बड़ा मुश्किल है, उसी ने ही ये संसार का समुद्र पर उत्पन्न किया है, उसमें आप तैर रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे, उससे पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही कर सकते हैं इसको पार जिन्होंने मेरे चरणों की शरण ले ली। अब बात यहां पर आती है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्या बता रहे हैं इस सवाल के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि नारद मुनि यहां पर युधिष्ठिर महाराज की बहुत तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। अच्छा, प्रशंसा तो लोग करते रहते हैं एक दूसरे की, लेकिन प्रशंसा कौन कर रहा है ये कभी सोचो तो समझ में आता है कितनी बड़ी प्रशंसा है। नारद मुनि जो प्रशंसा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की, ये कौन है? ये भगवान के सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े शुद्ध, सबसे बड़े भक्त, इतने शुद्ध इतने बड़े कि उनको किसी समय भी भगवान के पास आने जाने की आज्ञा है, चाहे वो वैकुंठ में बैठे हों चाहे द्वारका में शासन कर रहे हों। आप लोगों ने सबने सुना होगा जब द्वारका में कृष्ण जी 16108 राजाओं के साथ अलग अलग महलों में रहते थे, एक नारद तुमने सोचा देखे क्या कर रहे हैं, तो हर महल में किसी भी टाइम पे पहुंच गए कि देखा क्या लीला हो रही है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इतने बड़े भक्त नारद महाराज जी, अगर भागवतम आप पढ़े तो पूरी भागवतम में लिखा हुआ है नारद मुनि ने किसके लिए क्या क्या किया। शुरुआत व्यास मुनि ने 17 पुराण 4 वेद 108 उपनिषद सब रखे थे, लेकिन बहुत दुखी थे कि कुछ संतोष हृदय में नहीं हो रहा है, कुछ समझ है, कुछ बेचैनी है कि कुछ कमी रह गई है। तो नारद मुनि व्यास देव के गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने आके व्यास देव को बताया कि बेटा तुम गलती ये कर रहे हो कि तुमने सब कुछ लिखा लेकिन भगवान के शुद्ध प्रेम के बारे में नहीं लिखा। भगवान के भक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है शुद्ध प्रेम का, वो तुमने नहीं लिखा, इसलिए तुम्हारे हृदय में बेचैनी बनी रहेगी हमेशा जब तक तुम ये ना लिखोगे। तो नारद मुनि की प्रेरणा से व्यास देव ने भागवतम लिखी जो हम आज पढ़ रहे हैं। मतलब इतने बड़े भक्त नारद मुनि हैं, आप जानते हैं उन्होंने पृथ्वीराज को भी किया, उद्धार किया उनका, और ध्रुव महाराज को उन्होंने गाइड किया, प्रहलाद महाराज को गाइड किया, सबको। जितने बड़े बड़े भक्तों के बारे में पढ़ते हैं सबको नारद मुनि से प्रेरणा मिली, नारद मुनि का आशीर्वाद मिला। तो ये इतने बड़े भक्त जो हैं इस वक्त युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रशंसा में ही युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा है, कोई छोटा आदमी नहीं हो सकता जिसकी नारद मुनि ऐसे ही प्रशंसा करनी शुरू कर दे। तो प्रशंसा भी वो किस बात की कर रहे हैं, वो इस बात की कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से आपको जितना ज्यादा प्रेम है उतना ही कृष्ण को आपसे प्रेम है। जब युधिष्ठिर महाराज बात कर रहे हैं तो पांचों पांडवों को एक साथ मिला के कर रहे हैं, तो सिर्फ युधिष्ठिर महाराज से नहीं पांचों पांडवों से कृष्ण को इतना प्रेम। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कृष्ण जी पांडवों से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि वहां द्वारका में बैठे हुए 16108 रानियों के प्रेम पाश में बंधे हुए भी वो कभी कभी किसी दूत को भेजते थे हस्तिनापुर जहां पांडव रहते थे कि उनकी एक चिट्ठी लेके आओ कि हम कृष्ण के लिए, हमारे लिए, कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आप आए, आपकी बहुत आवश्यकता है हमें। तो फटाफट अपनी पत्नी को चिट्ठी दिखाते थे कि भाई पत्र आया है, हमको जाना पड़ेगा, बहाना सब उनका था। तो पत्नियों को छोड़कर पांडवों के पास जाते थे हस्तिनापुर। अब आप सोच लीजिए कितना प्रेम होगा जो पत्नी को छोड़कर वहां जा रहे, और ये पत्नियां भी कोई साधारण पत्नियां नहीं, कितना प्रेम करती थी, उसके बावजूद ही जाते थे। तो इतना ज्यादा प्रेम, और उस प्रेम के वश ही जितना जब भी कभी पांडवों को कोई कष्ट हुआ तो कृष्ण जी हमेशा उपस्थित होते थे। अभी मैं आपको 2-4 उदाहरण देके बताता हूं। लेकिन एक संबंध जो होता है कभी एक तरफा नहीं होता, एक तरफा हो ही नहीं सकता। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही संबंध जो है हमेशा दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान पांडवों को प्यार करते थे इसलिए कि पांडव इनको इतना ज्यादा प्यार करते थे। ये समझ लीजिए, आप कभी पांडवों के हृदय में किसी और की पूजा करने की सोचा ही नहीं, दिमाग में नहीं आया। आप सब जानते हैं जब ये पांडवों की सभा में यह तय हो रहा था किसकी अग्र पूजा की जाए, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान का नाम आया। एक बार आप जानते हैं द्रौपदी के पांच पति थे, पांचों पांडव, तो अपने अपने तो होता ही होता था, बेसिकली जिस पति के साथ है उस पति का जूता बाहर रहता था, तो कोई जाना था समझ के भाई इसके साथ हैं तो अंदर नहीं जाना था। एक बार लेकिन द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के पास गई शिकायत लेकर। क्या शिकायत लेकर? कृष्ण भगवान की शिकायत लेकर। शिकायत क्या कि जब भी मैं अर्जुन के साथ होती हूं ये कृष्ण वहां आ जाता अंदर और मुझसे कहता भागो, मैं अपने पति के साथ बैठी हुई हूं मुझको भगा देता है। सुबह आना कहने आज फिर ऐसा हो गया। तिशमान का ये तो कुछ चक्कर समझ नहीं आया। तो अच्छा अगली बार ऐसा आपको बताना जरूर। कुछ दिनों के बाद फिर हुआ, द्रौपदी दौड़ती दौड़ती गई दुष्य महाराज के पास कि आज फिर ऐसा हुआ। तिशमान का चलो देखते हैं क्या हो रहा है। गए दरवाजे से झांक के देखा क्या हो रहा है। आप विश्वास मानिए अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था, कृष्ण भगवान अर्जुन के चरण दबा रहे थे, अर्जुन के रोम रोम से आवाज आ रही थी क्या कृष्ण 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 कृष्ण। ये प्रेम था पांडवों का। जब भी कभी मुसीबत आई पांडवों के ऊपर उन्हें किसी देवता को नहीं याद किया, किसी और आदमी को याद नहीं किया, विश्व पितामा को याद नहीं किया, उनके लिए तो सिर्फ कृष्ण ही थे, कृष्ण के अलावा कोई नहीं थे, अनन्य भक्ति। तो उस अनन्य भक्ति का परिणाम यह होता था कि दो तरफा जो संबंध बन गया, कृष्ण को पांडवों से ज्यादा पांडवों की चिंता होती थी। इसीलिए जब द्रौपदी को का चीरहरण होने वाला था, दुशासन बदमाशी कर रहा था, उसने द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू किया और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, फौरन ही कृष्ण जी ने एक साड़ी का भंडार खोल दिया, साड़ी अनलिमिटेड भंडार, दुशासन जितना मनो खींचो, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। दुशासन के पास 6,000 हाथियों का बल था, वो भी कोई साधारण आदमी नहीं था, 6,000 बालियों का उसके बामों में हाथियों का मोहम्मद, वो खींचता खींचता थक गया। भगवान अपने बैठे आराम से मुस्कुरा रहे हैं साड़ी सप्लाई कर, लो जितना सैंपल लो लो, हर कलर की आ रही है, हर शेड की आ रही है, हर पैटर्न की आ रही है, लो। लेकिन वो थे वहां पर, द्रौपदी के ऊपर मुसीबत थी, वो थे वहां पर। दोबारा द्रौपदी पांडवों को मुसीबत आई जब दुर्योधन ने भेज दिया दुर्वासा मुनि को कि आप जाइए उनके पास आमंत्रण लीजिए लंच का, और उस समय भेजा जब उसको मालूम था कि ये लोग अपना खा चुके होंगे, द्रौपदी खा चुकी होगी, तो उसके जो अच्छे पात्र था उसमें वर यह था कि अगर द्रौपदी ने खा लिया तब कुछ नहीं बनेगा, वरना चाहे जितने 1,000 लोगों को बनवा लो। तो दुर्वासा मुनि पहुंचे, उसी टाइम पहुंचे जब द्रौपदी खा चुकी थी, बर्तन धोकर रख दिया और कहा कि भाई हम आए हैं, अब पांडव क्या करें। हाँ आइए बिल्कुल आपका आमंत्रण है, आइए भोजन प्रसाद लीजिए। दुर्वासा ने कहा हम नहा के आते हैं, 60,000 शिष्यों के साथ थे, अब आप सोचिए। तो चले गए नहाने, द्रौपदी ने कहा कृष्ण बचाओ, भाई द्रौपदी के पास तो और कोई सहारा नहीं, ना कोई सहारा चाहती, कृष्ण बचाओ। कृष्ण फौरन पहुंच गए, आप सब जानते हो कहानी, ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाहते हम। तो उन्होंने कहा द्रौपदी बड़ी भूख लगी कुछ खिलाओ भाई। द्रौपदी ने कहा मैं क्या खिलाऊं आपको, तो खुद ही जानते हो मैं तो खा चुकी, बर्तन धो चुकी, रख दिया। कृष्ण कहा नहीं नहीं कुछ तो बचा होगा। अरे नहीं भैया मैं बहुत सफाई से काम करती हूँ, कुछ नहीं बचा। अरे कुछ बचा होगा तो दिखाओ दो। लैब देखा उसमें छोटा सा साग का टुकड़ा बचा हुआ था, कोई कहता चावल कोई कहता साग, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने खाया, दुर्वासा मुनि के डकारे आने लगे, 60 थे उनके डकारे लगे। इससे पहले कुछ पहले ही अम्बरीश महाराज साधु का चक्कर हो चुका था,
अमित महाराज को गुस्सा कर दिया था, चक्र सुदर्शन आ गया था उनके पास, पहले से घबराए हुए थे। उन्होंने कहा आप हम वापस नहीं जाएंगे, खाने के लिए मारे जाएंगे, भाग लो। सब के सब भाग। कहने का मेरा मतलब सिर्फ यह है, जब जब पांडव जैसे भक्तों के ऊपर मुसीबत आई, कृष्ण वहां खड़े मिले। तो ये तारीफ कर रहे नारद मुनि कि आप कृष्ण भगवान से इतना ज्यादा प्रेम करते हो कि भगवान कृष्ण हर वक्त आपके सामने खड़े रहते हैं, कभी दूत बनकर, कभी आपके एक्चुअली मसाज करके, जब आपको देखते हैं प्रणाम करते हैं, आपको बड़े भैया बोलते हैं। कितने लोगों का भाग्य ऐसा है, तो उनके भाग्य की तारीफ कर रहे हैं। तो उस इतने भाग्यवान पांडव बने कैसे भाई, हम आप इतने भाग्यवान नहीं हैं, पांडव कैसे इतने भाग्यवान बन गए, क्या किया उन्होंने, ये हमको समझना चाहिए आज। तो दो बातें हैं, एक तो पांडव आत्मज्ञानी बन गए थे। आत्मज्ञानी माने आत्म, हम कौन हैं, आमिकी रूपक को सामने पूछा था नारद चतन महाप्रभु से, हम हैं कौन। अब लोगों से पूछे भाई क्या, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं भैया हम नहीं पूछ रहे, अच्छा मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उनकी पत्नी, नहीं हम नहीं पूछ रहे हम क्या हैं। बहुत जमाने के बाद समझ में आता है हम आत्मा हैं, वे देह नहीं। यही समझना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये नहीं कि हम जानते नहीं, पढ़ा हमने हजारों बार, हम वो श्लोक भी बोल देंगे लोगों को, देह नस्म जथा देह जो भी है हम बोल देंगे, लेकिन अंदर से विश्वास है कि नहीं है। हम अपने जो काम करते हैं वो हिसाब से करते हैं कि महात्मा है, हिसाब से करते हैं कि हम दे। मेरे ख्याल से ज्यादातर यही कहेंगे, ईमानदारी की बात यह है कि हम काम वही करते हैं जो हमारे देह के लिए, इंद्रिय तृप्ति में हम अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी हम पैसा कमाना चाहते हैं, अभी भी हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अभी भी हम शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, आदि आदि। कहने का मतलब कि हम बातें कुछ करते हैं, करते कुछ, लेकिन नहीं पांडवों का नहीं, हम आत्मा है। आत्मा होने का मतलब क्या होता है, हम है कौन, माने जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन, हम कृष्ण के नित्य दास। लेकिन नित्य दास का मतलब क्या होता है, नित्य दास माने मतलब होता है कि जो आप कहें वही हम करें। करिष्य वचनम तव, 18वें अध्याय का 73वें श्लोक में अर्जुन ने बोला अब मैं वही करूंगा जो आप कहें। दास का पहला कर्तव्य है जो मालिक कहेगा वही करूंगा, लेकिन वो असली दास नहीं हुआ। असली दास वो हुआ जो मालिक चाहता है वो हम करेंगे, वो हमसे कहे ना कहे। गुरु शिष्य के लिए यही कहते हैं, गुरु का अगर इंतजार किया वो कहे भाई ऐसा तुम करो तो क्या बात हुई। अब आप जानते हैं गुरु के मन में क्या है तब आप करते, तब बात हुई। तो असली दास माने हम जानते हैं कि भगवान हमारे क्या चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम उनके कहने के पहले करते। अभी हम शास्त्र के डर से, गुरु की आज्ञा से कुछ काम करते हैं, माला भी करते हैं, इसलिए गुरु ने कहा 16 माला करो, शास्त्र में लिखा है कि नहीं करोगे तो चक्कर में पड़े रहोगे, कुछ डर है उसके वजह से कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा गुरु का उसके वजह से कर रहे हैं। नहीं, पांडवों के लिए वो नहीं था, पांडव हृदय से नहीं हमको तो इनकी सेवा करनी है, हमको तो इनका नाम लेना है। जैसे रूप गोस्वामी ने लिखा भक्ति रसा सिंधु में, स्मर्तव्यो सततम, सॉरी सततम स्मर्त्यो विष्णु विस्मर्त्यो न जाच्यु सर्व विधि निषेधास्यु एतियोर एव किंकर। रूप गोस्वामी ने लिखा कि हमेशा कृष्ण को याद करो और कृष्ण को कभी नहीं भूलो। तो एक रूल जो है, जितने भी दुनिया में रूल है, जितने शास्त्र जितने रूल है, सबका मालिक ये रूल है, कृष्ण को कभी मत भूलो और कृष्ण को सदैव याद रखो। पांडव इसको फॉलो करते, कोई भी काम हो कुछ भी हो पहले कृष्ण बाकी बात। इसलिए वो उनका जो था नेचुरल प्रेम था। तो नेचुरल प्रेम कैसे अपने आप होता है, इसके लिए भी भागवतों में पहले स्कंध में दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में सुत गोस्वामी ने कहा सवय पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति यदोक्षजा अहत की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। क्या मतलब हुआ कि जो आत्मा है वो तभी प्रसन्न होती है जब वो अप्रतिहता माने बिना रुके। ये नहीं भैया 2 घंटे मेरा माला हो गया थाली पीटे फुर्सत हुई, अब जो मनो करो टीवी देख लो, आज क्रिकेट मैच आ रहा वो देख लो, नहीं 24 घंटे सातों दिन 365 दिन। और अहैतुकी माने हे कृष्ण हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, हमें आप चाहिए। जो साधारण मनुष्य है कहता आप बैठे रहो लक्ष्मी हमको दे दो, जो भक्त है वो कहता हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। तो चलिए बहुत सी कहानी है। एक बार एक राजा था, उसने अपने राज में घोषणा कर दी कि आज के दिन मेरा महल खुला होगा, जिसका मन हो आए, जो चाहे मांग ले दे दूंगा। तो आप सोच सकते पूरा राज्य उमड़ पड़ा, हर आदमी आया, किसी ने खाती मांगा, किसी ने घोड़ा मांगा, किसी ने धन मांगा, सबने कुछ ना कुछ मांग लिया। अंत में एक वृद्धा आई, राजा के पास गई, राजा का माते क्या चाहिए आपको, तो जानते उसने क्या कहा, राजन मुझे आप चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो राजा ने कहा आप मेरी माता बन गए आज, आप तो पूरा राज्य भी मिल गया, राजा भी मिल गया। वैसे ही भगवान कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी हैं, त्रिलोक उनका है। हम उनके पास जाकर अगर हम 10 करोड़ रुपए की मांग लें तो उनके लिए कुछ नहीं है, नहीं हमने अपना अवसर गंवा दिया। एक अवसर मिला था उनसे कुछ भी मांगने का, उनको ना मांग कर उनकी कोई चीज मांग ली जो हमारे काम नहीं आई, हो सकता थोड़े दिन काम आ जाए, एक दिन इतनी सोची तो छूटे गई चले, क्यों ना वो वस्तु मांगे जो हमेशा हमारा चले। मुझे याद है आज से करीब 10 साल पहले वृंदावन में जो पुलिस चौकी है यहाँ पर एक बिल बोर्ड लगा हुआ था, उस सामने अपार्टमेंट्स वगैरह मिलने शुरू हुए थे, तो उसमें अंग्रेजी में एक साइन लगा हुआ था, लिव लाइक ए किंग इन द किंगडम ऑफ कृष्ण, कृष्ण के राज्य में राजा की तरह रहो। और मैंने कहा भगवान क्या ये साइकोलॉजी हो गई है, कृष्ण के राज में राजा तो रहते कृष्ण कहाँ जाएंगे, आप कृष्ण से कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं तुम हटो तुम्हारे सिंहासन में मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ, अब तुम्हारे सिंहासन में मैं बैठूंगा, बस वही सब गड़बड़ जाता है। पांडवों ने ऐसा कभी नहीं किया। हम जानते हैं इसका उसका उदाहरण क्या है, जब युद्ध शुरू होने वाला था तो दोनों अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के साथ पास मिलने गए उनसे सहायता मांगने के लिए। कृष्ण जी उठे, पहले उन्होंने अर्जुन को देखा था तो अर्जुन से कहा तुम पहले मांगो, दुर्योधन की तो हालत खराब हो गई, अरे बाप रे इसने पहले मांग लिया सेना ले जाकर मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, मतलब कृष्ण मुझे आप ही चाहिए। कृष्ण ने कहा अर्जुन सोच लो, मैं आऊंगा तो मेरी सेना नहीं आएगी। अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे आप ही चाहिए। अर्जुन की दुर्योधन तुम्हारी खिल गए, मुस्कुराते हुए बड़े सीधे बोला अच्छा ठीक है तुम कृष्ण को ले रहे हो तुम उनकी सेना ही ले लो। और हम सब जानते हैं क्या हुआ। कहने का मतलब यह है जो शुद्ध भक्त खासतौर से पांडवों की बात कर रहे हैं उनको कृष्ण के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो मनुष्य जिसको कृष्ण के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं वो दिन भर क्या करता है भाई, वो भगवान के एक आदेश का पालन करता है, जिस आदेश को भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को 2 बार दिया। कौन सा आदेश है, मन मना बहु भगवतो मद्याजी मामनोज। मन मना माने क्या, हर समय हर क्षण हम अपने दिमाग को अपने मन को कृष्ण पर ही केंद्रित किए हुए हैं, हमें किसी और बात से मतलब है ही नहीं, हमको कुछ और चाहिए ही नहीं। कोई लक्ष्मी हो, कोई जायदाद हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई हमको उससे मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए। और कृष्ण किस लिए चाहिए कि हम उनकी सेवा कर सकें, बस और कोई कारण नहीं है, बस हम उनकी सेवा कर सकें। पांडव उस पोजीशन पर थे, उस स्थिति में थे, इसलिए नारद मुनि उनकी तारीफ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में 66 श्लोक में वो भी कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो सिर्फ मेरे पास। पांडवन भी ये कहा राज्य नहीं मिलता दुर्योधन जेल में जाने दो, बड़ी चीज़। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं तुम युद्ध करो, भानुओं ने कहा नहीं हमारे साथ आप चिंता नहीं युद्ध करो, ठीक आप कह रहे हो युद्ध करना है तो करे। उससे क्या होता है देखिए, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने युद्ध किया, दोनों ने बहुत सैनिक मारे एक दूसरे साइड के, लेकिन दुर्योधन को हम कभी तारीफ नहीं करते, अर्जुन कहते तुम शुद्ध भक्त, क्यों? उसने कहा जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, कनिष्ठ वचन तो माने जो आपकी आज्ञा मैं वही करूंगा, जो आपका इंस्ट्रक्शन मैं वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। यहां तक देखिए कृष्ण जी भी कोई आसान नहीं है इस सेंस में कि टेस्ट जब लेते हैं ना बहुत तगड़ा टेस्ट लेते हैं। अर्जुन का टेस्ट कैसे लिया उन्होंने युद्ध में, अर्जुन के सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, शिखंडी को बिठा दिया गया है, भीष्म पितामह ने कहा मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, ये तो औरत है स्त्री है, अपने अस्त्र शस्त्र दिए उन्होंने, ऐसे करके खड़े हो गए, हाथ में कोई युद्ध वो नहीं है वेपन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण चलाओ, अर्जुन देख रहा है कृष्ण की तरफ, ये मेरे पितामह हैं युद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने धनुष बाण छोड़ दिया मैं युद्ध बाण चलाओ। कृष्ण ने फिर कहा अर्जुन बाण चलाओ, कृष्ण वचनम तो हम तो आप क्या क्या मानेंगे, रोने लगा लेकिन बाण चलाने शुरू कर दिए, बार बार कृष्ण ने कहा बाण चलाओ चलाता गया चला रोता रहा बाण चला गया, क्यों? कि भगवान कृष्ण की आज्ञा है, यह है भक्त की निशानी, कुछ भी हो करे। जब एक भक्त इतनी तरह से समर्पण कर देता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो गए। कैसे हो गए? कच्चा उदाहरण क्या है, जब कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था, आप जानते हैं कर्ण की दुश्मनी सिर्फ अर्जुन से थी, किसी और पांडव से नहीं। कई बार ऐसे हुआ कर्ण चाहता तो नकुल को सहदेव को बड़ी आसानी से मार सकता, छोड़ दिया उसने, नहीं मेरी दुश्मनी तो उसे नहीं, हमें तो खाली अर्जुन। तो उसने एक बाण चलाया कर्ण ने, जिसको सर्प बाण बोलते हैं, सर्प बाण उस तक्षक बैठा हुआ बाण के ऊपर, और उसकी खासियत अपना निशाना कभी चूक सकता ही नहीं, चाहे जितना बड़ा योद्धा सामने खड़ा हो। अब अर्जुन है सामने, उसने बाण चलाया, अर्जुन की कोई हैसियत नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं थी कि उससे बच सके, तो कृष्ण जी खड़े थे, क्या करें, अपने अंगूठे से पैर के अंगूठे से रथ को दबा दिया जमीन के नीचे, तो बाण था उसको अर्जुन के मुकुट पे लगा और निकल गया। अर्जुन ने ये क्या हुआ, तब कृष्ण ने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ था। अगेन कहने का मतलब हमारा ये है जब आप समर्पण करते हैं तो कृष्ण भी समर्पण कर देते हैं, ये जथा मां प्रपद्यन्ते का मतलब यही है, जैसा आप मुझको शरण मेरी शरण में आओगे वैसा ही मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, वही करूंगा जो आप कहें। अरे भाई उसका क्या उदाहरण, जो वही कहोगे वही करूंगा। तो रसखान एक बहुत बड़े भक्त हुए, मुसलमान थे लेकिन बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए, तो उन्होंने क्या कहा, एक बहुत सुंदर कविता लिखी, उन्होंने कहा शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अच्छेद सुवेद बतावे। नारद से मुनि व्यास कहें पचिहारे त्यो मुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या मतलब, ये कह रहे रसखान कह रहे जिनकी पूजा शेष जी अनंत शेष गणेश जी शिव जी इंद्र करते हैं, जिनको वेद बताते हैं अच्छेद अभेद, जिनका गुणगान करते रहते हैं, नारद मुनि व्यास देव सुखदेव गोस्वामी इनके बारे में सोचते रहते हैं समझ रहते हैं कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को ये अहीरों की छोरियां एक छोटे से दोने भर छाछ के लिए नाचो नहीं मिलेगा, उनकी आज्ञा से भगवान नाच रहे हैं। जो भगवान पूरे संसार को नचाते हैं, कहते हैं हम उनकी तरह कठपुतली की तरह हमको नचाते हैं, वो भगवान इन छोहरियों के अहीरों के छोरी के आज्ञा से नाच रहे हैं। वो कहते हैं मैं थक गया मुझे दे दो, कहते नहीं थोड़ा और नाचो, नाच रहे, क्यों? क्योंकि इतना प्यार करते, इतना संबंध उनका प्रेम का, उस प्रेम के संबंध में वो नाच रहे। वैसे ही नारद मुनि युधिष्ठिर से कह रहे हैं वैसे ही तुम्हारा संबंध हो गया है कृष्ण की तरह, इसलिए कृष्ण हमेशा प्रस्तुत हैं तुम्हारे सामने जो जरूरत है वो करने के लिए। जब भी हमने कई एग्जाम्पल आपको उदाहरण दिए हैं, आपको जब भी पांडवों पर मुसीबत पड़ी, कृष्ण वहां पर थे, चाहे वो भीम को जहर खिलाया गया हो, चाहे जितने हमने अभी एग्जाम्पल दिए वह हो, चाहे द्युत क्रीड़ा में उसे छल किया गया हो, चाहे उनको अज्ञातवास दिया गया हो, जलाने की कोशिश की गई हो मल में, सब टाइम पर कृष्ण थे उनको बचाने के लिए। किसी भी समय पांडवों ने कहा यार इतनी सेवा की हमने कृष्ण जी की, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, कभी नहीं, हमेशा यार जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, जहां भी जरूरत होगी हम तुम्हारी रक्षा करें। तो नारद मुनि युधिष्ठिर कह रहे हैं तुम हमेशा से सुरक्षित हो क्योंकि तुम कृष्ण से इतना प्रेम करते हो, ये तुम्हारा भाग्य, ये अति भाग्य है तुम्हारा। तो मैंने बताया कि भगवान इसलिए हुए कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया, कृष्ण प्रेम इसलिए उन्होंने इतनी सेवा किया और अनन्य भाव रखा उनके, उससे फिर उनको इतनी श्रद्धा पैदा हो जाती है कि हमको चिंता नहीं, जो कृष्ण करेंगे ठीक करेंगे, रक्षिष्यति इति विश्वासो, माने जब कभी हमको जरूरत पड़ेगी कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इसमें हमको कोई शक संदेह नहीं है। तो कृष्ण भी कहते हैं भाई जिसको ये विश्वास है रक्षिष्यति इति विश्वासो, उसको मैं कैसे धोखा दे दूं। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा 6 महीने का 1 साल का, माँ उसको हवा में उछाल देती है, जब हवा में उसको उछाल देती है बच्चा रोता है कि हंसता है, हंसता है, क्यों हंसता है, उसको विश्वास है जब मैं नीचे आऊंगा तो मेरी माँ उसको पकड़ लेगी, एक क्षण के लिए नहीं सोचता कि अरे छोड़ दिया तो क्या होगा, नहीं। उसी तरह से भक्त को भी रक्षिष्यति इति विश्वासो, विश्वास है हमको जरूरत होगी तो कृष्ण आएंगे हमारे पास। हम कभी कभी कहते हैं हमको इतना विश्वास है, लेकिन सच में है या नहीं उसके लिए सोचना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था, इसको नट बोलते हैं, जो अपने तैरते कमाल करते हैं, तो ये एक हाई वायर एक्ट था, तो मतलब 30 फुट ऊंचा खंभा बांध के एक तार बांध दिया उसने, और अपनी बेटी 6 साल की बेटी को कंधे पे बिठाया, चढ़ गया तार के ऊपर। आपने कभी देखा होगा कि वो एक डंडा होता बड़ा सा, उससे वो अपने को बैलेंस करते हैं, लेकिन ये अपनी बेटी को बिठाया हुआ था डंडा लिए हुए, करीब 60-70 फुट का रहा होगा लंबाई, उसमें 30 फुट के ऊपर चल रहा था, हवा चली थी, ऐसे ऐसे हो रहा था, चला था, सब लोग तालियां बजा रहे, बहुत उसे कर रहे थे, फिर करीब ऑलमोस्ट 2 फुट बचे थे, तो खड़ा होकर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, लंबे लंबे तालियां बजाई, उसने कहा कि आपको विश्वास है मैं पार कर जाऊंगा, सबने कहा हाँ पूरा विश्वास है तुम पार कर जाओगे, आपको पक्का विश्वास है, हाँ पूरा विश्वास है आप कर जाओगे, और उसने कर दिया पार, नीचे आया लोगों ने तालियां बजाई, पैसे देने शुरू कर दिए, कहा हमें मालूम था आपको पूरा विश्वास है तुम कर लोगे, हमने कहा था ना, उसने कहा आपने कहा था, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि दोबारा एक बार फिर करो, हाँ करूँगा, लेकिन प्रश्न मेरा ये है आप में से कौन अपनी 6 साल की बच्ची को दे देगा मैं उसको गंदे बिठा लूँ और वही करूँ जो अभी करा, आप कह रहे हो आप मैं आपका मेरे पर विश्वास है अपनी बेटी को बिठा दो मेरे कंधे पे, मैं वही करूँ, एक ने भी नहीं किया। हमारा वही हिसाब है, क्षमा की जगह मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा वही हिसाब, हम कहते हैं भगवान हम पे विश्वास है आपके ऊपर, हमारा आपके पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है आप रक्षा करोगे, लेकिन प्लान बी बना लेते हैं, पैसा कमाया बचा लिया, बिजनेस किया थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया भाई कुछ गवर्न न होने पावे, क्यों शायद कहीं कृष्ण धोखा दे जाए तो बहुत छलिया आदमी कुछ कर दे चक्कर, कहने का मतलब ये कहते हम जरूर हैं लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। ये फर्क है पांडवों में और हम में, उनको पूर्ण विश्वास, कुछ भी हो कोई भी बात हो हम करेंगे। एक्सक्यूज़ और चूंकि पूर्ण विश्वास नहीं है इसलिए हम ये भी नहीं कहते कि भाई पूरा कंट्रोल भगवान के पास है। भगवान ने कृष्ण बताया, सॉरी भगवान ने अर्जुन को बताया भगवद्गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर माने पूरे संसार का, तीनों लोगों का मैं स्वामी हूं, उसके माने मैं कंट्रोल, सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है मान लिया, लेकिन अपने जगह कंट्रोल होगा, भैया कंट्रोल मैं भी हूं, अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा डॉक्टर बनाऊंगा, अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा अमेरिका भेजूंगा, बच्चा पैदा हुआ नहीं हमने प्लान बनाने शुरू कर दिए और कोचिंग भेजा सो कि यह क्या हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, तुम हो गए अपनी जगह कंट्रोलर, नहीं अपनी जगह कंट्रोलर, मेरे बेटे का कंट्रोल मेरा है बाकी कंट्रोल आपका, करते कि नहीं करते है ना। अच्छा दूसरी बात हम लोगों से बताएंगे, अरे मैं उस कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया हूं, मेरे अंडर में 3,000 लोग काम करते हैं, 10,000 करोड़ का रिटर्न है हमारी कंपनी में। क्या हुआ उस बात को जो भगवान ने कहा भगवत गीता में अर्जुन को, हर इंसान की काबिलियत मैं हूं, पौरुषम ऋषु 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, पौरुषम ऋषु हर इंसान की मैं काबिलियत हूं, और 11वें श्लोक बताया बलम बल बताम चाहूं, हर बलि का बल मैं हूं। तो अगर हर इंसान की वो काबिलियत है, माफी मैं लखनऊ कहूँ उर्दू कभी बोल देता हूँ, और हर बलि इंसान का बल हूँ, तो आपका बल कहाँ से आ गया जो आप प्रेसिडेंट बन गए भाई, आपकी कंपनी कहाँ से आ गई, ईशा वसे दम सर्वम क्या हो, जब सब कुछ भगवान का तो आप कैसे हो गया, लेकिन उस टाइम पे मेरा है। तो फिर वही बात वही कहना चाहता हूँ कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की पांडवों की तारीफ करें तो ये सब चक्कर में नहीं पड़े। और विश्वास की हद बताता हूँ आपको, जिसको कहता इससे ज्यादा विश्वास कौन क्या कर सकता है। कुंती महारानी कौन थी, पांडवों की माँ, उनकी विश्वास बात करते हैं, पांडवों की बात छोड़िए, इतना विश्वास इतना उनको कहा, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवताम दर्शनम यसार अपुनः भव दर्शनम। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा हे कृष्ण, ये तब की बात जब कृष्ण जी हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जा रहे थे, तब मदर कुंती ने उसे बोले हे कृष्ण तुम कुछ का एक काम करो मेरा, उनके भतीजे थे मदर कृष्ण जी की बुआ थी कुंती, एक तरह से आज्ञा दे रही है कृष्ण कुछ ऐसा करो कि हर समय मेरे ऊपर मुसीबतें आए। कितने लोग आप यहाँ बैठे हो जो कभी घर से निकलते हो कहते भाई आज मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जाते कुछ ठोकर लगे मेरा सिर टूट जाए, कितने लोग करते हो यहाँ, कोई नहीं करता। अरे क्या मदर कुंती क्रेजी थी क्या, कुछ संकी टाइप थी क्या, नहीं बिल्कुल नहीं थी, उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है जिनके पुत्र पांडव रहे हों, जिनकी बुआ हो और जिनकी भतीजे हैं कृष्ण हो, पागल कैसे हो सकती, लेकिन वो कह रही मुझको हमेशा मुसीबतें दो, हर समय शश्वत माने हर क्षण मुझे कोई ना कोई मुसीबत दो। चक्कर क्या भाई, कि चक्कर यह है कि जब भी मेरे पर मुसीबत आती है मैं आपको याद करती हूँ, जब भी मैं आपको याद करता हूँ आप आ जाते हो, मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं, और मुझे मालूम है आपके दर्शन हुए तो मुझे इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। समझने की बात है, हम में कितना ये बात को समझते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। साफ बात बताएं आपको, बहुत से ऐसे जो आना चाहते हैं, और ये मैं आपको सही बता दूं, उदाहरण देता हूं आपको, प्रभुपाद शायद 1973 की बात है, अमेरिका में किसी शहर में क्लास दिया उन्होंने, उस क्लास में उन्होंने अभी आप सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो, उस क्लास में उन्होंने कहा कि जो भी वैकुंठ में जाएगा गोलोक में जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। तो आप लोगों से कितने लोग जाना चाहते हो, करीब करीब सामने, हाँ उठाई उठाई उठाई, हाँ कितने लोग जाना चाहते हो, नहीं फिर भी कुछ लोगों ने नहीं उठाया, और वही कहानी है, तो एक आदमी नहीं उठाया, यहाँ तो कहीं नहीं उठाया, वहां पर एक आदमी नहीं उठाया। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों भाई आप नहीं जा सकते, तो उनका पहले मैं आपको जवाब दूँ उससे पहले आप मेरा जवाब दीजिए कि वहाँ जाने के बाद कभी वापस नहीं आऊँगा। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ वहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आओगे, मतलब जो मेरा इतना पैसा यहाँ पर है, जितना मेरा प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मेरा परिवार है, उससे मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाओगे तो फिर मैं नहीं जाना चाहता, तो फिर मैं नहीं जाना चाहता। अब आप देखिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा लेकिन आप अपने आप से पूछिएगा, अगर इस क्षण इसी क्षण कृष्ण भगवान उपस्थित हो जाए, अब भगवान जानते हैं सबके सामने एक एक खड़े हुए हैं, ये नहीं कि एक खड़े बाकी लोग देख रहे हैं, हर के सामने एक एक खड़े हुए हैं, आपसे कहते हैं बेटा चलो मेरे साथ ऊपर, आपसे कितने लोग कहोगे जब बीबी को बता दो, पति को बता दो, बेटे को बता दो, तब चलते हैं, हम यही करेंगे, शायद दो चार चलें, हम यही करेंगे, क्यों, हमें कमजोरी है, अभी हमारा समर्पण पूर्ण नहीं है, हमारा समर्पण पूर्ण इसलिए नहीं है कि अभी आप थोड़ी देर पहले बातें हो रही यहाँ पर कि हम नाम लेते हैं वो अपराध रहित नहीं लेते हैं। सब कुछ देखिए इस्कॉन में लोग कहते हैं जो इस्कॉन के नहीं है वो कहते हैं क्या यार, जब देखो बात घूम फिर वही आती है चैटी करो चैटी करो चैटी करो, अरे भैया कुछ और है ही नहीं, हम करें क्या। अच्छा कोई कहे कि जब देखो आप कहते हैं खाना खा लो रोज कहते हो खाना खा लो, कोई कहता है यहाँ पर कि रोज कहते खाना खा लो, हम नहीं कहते, नहीं कहते दो चैटिंग कर लो, हर जब कहो कुछ कोई मुसीबत चैटिंग कर लो, खुश हो तो चैटिंग कर लो। अरे कोई ऐसा समय जब चैटिंग ना करें, नहीं, लेकिन चैटिंग करने की बात हम कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं अपराध रहित चैटिंग करने की। असली चीज तो वही है ना, जब हम अपराध रहित चैटिंग शुरू कर देंगे तब हमारा वो समर्पण पूर्ण हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये आसक्ति बनी रहेगी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रॉपर्टी, सब चलता रहेगा। और जब तक वो चलता रहेगा तब तक कृष्ण जी कहेंगे भैया जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जितना समर्पण करोगे उतना आप कर देंगे, और जिस भाव से करोगे उस भाव से कर देंगे। कृष्ण तो कहते हैं कि कृष्णा यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिए, अगर कृष्ण जी कहते हैं अगर मुझे किसी को मुक्ति दे दें, किसी को धन दे दें, पद दे दें, छुट्टी मिले, कहते ठीक है बच गए, हमको हम स्वामी तो बने अभी तक। अगर शुद्ध भक्त हो गया कोई तो वही अहीरों की छोरी की तरह से कहेगा नाचो, मुझे नाचना पड़े तो मैं काहे को करूं भाई। इसलिए भगवान जो है भक्ति आसानी से नहीं देते, लेकिन वो ये भी कहते कि तुम प्रयास करोगे तो मैं दूंगा। रूपा था कहते थे तुम एक कदम लो भगवान कितने लेगा, 100, 10 लिए, वो तो 100 देने को तैयार है, 99 हो गए, तो आप एक कदम लिए भगवान तो करो, तो करें तो हम करें तो भगवान का नाम ले थोड़ा शुद्धि से। कभी एक क्षण तो हम किसी दूसरे के बारे में ना सोचें, कहे भगवान गलती हो गई, एक बार गलती हो गई बस। कब? बहुत शुरू में जब आपकी सेवा में लगे हुए थे, हम जानते थे महात्मा है, हमारा स्वरूप आपका दास है, हमने कहा नहीं भाई दास बनते बनते बोर हो गए, अब हम स्वामी बनना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करते करते बोर हो गए, अब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, फटाक से फेंक दिए गए वहाँ। उन्होंने कहा भैया, कृष्ण जी ने कहा भैया ऐसा है कि ये तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि बाई नेचर ना तो तुम एंजॉयर हो ना तुम प्रोप्राइटर हो, तो कहा ऐसी जगह जाओ जहां तो सोचो कि ऐसा है कि हम ही नियंत्रण करता है, हम ही आनंद लेने वाले हैं, इंद्रिय तृप्ति वाले हम ही हैं, हमारी इंद्रियों के बारे में सब कुछ है, तो जाओ जहां सोते रहो, माया में पड़े रहो, और उस माया में कभी मार पड़ेगी कभी पीट पड़ेगी, पड़े रहो, और हम बड़े खुश हैं, हाँ भाई इस बार बड़ा धन मिल गया, इस बार पदवी मिल गई, इस बार हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम बहुत खुश। लेकिन उसमें और हमें क्या फर्क है, कोई आदमी जेल में पड़ा हुआ हो और राजा आ जाए वहां, राजा कहे सब लोग बैठो, जितने कैदी है जो मांगना हो मांग लो, कोई कहता है यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, कुछ खाने की क्वालिटी बढ़ा दो, एक ने कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छा बनाती है मेरे लिए उसका खाना भेजा करो, ठीक, एक ने कहा भैया मैं तो जिम करता था यहाँ कोई जिम है नहीं कुछ जिम बनवा दो, ऐसे सब ने कुछ कुछ मांग लिया, रहे बैठे सब वहीं पर। एक उठाया उसने कहा महाराज एक बार एक गलती हो गई थी उसकी वजह से मैं यहां बैठा हुआ हूं, हम उसको इस बार छोड़ दो, कसम खाता हूं अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, तो छोड़ी। अब कौन अक्लमंद कौन है उनमें से, हम भी हमारे पास वो अवसर है, हम भी अगर भगवान कृष्ण सामने राधा श्याम सुंदर सामने खड़े हो जाए कि हे भगवान हे राधा रानी हे श्याम सुंदर एक बार गलती हो गई, उस गलती का मैं पत्नी करोड़ों 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 साल से भोग रहा हूं, अब मेरी समझ में आ गया वो गलती थी मेरी, मैं आपसे वादा करता हूं वो गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लीजिए अपनी शरण में ले लीजिए। वो ले लेंगे, वो बहुत कृपा, निज गुण उनका है, निज गुण उनका गुण है दया करना, ये बहुत अच्छा भजन है भक्त ठाकुर का, निज गुण दया करो, उनका गुण ही है दया करना, बस हमें उनके पास पहुंचना है, गलती हो गई भगवान क्षमा कर दो इस बार, अगले कभी करूंगा नहीं, मैं कसम खाता नहीं करूंगा, वो ले लेंगे। करें हम आज, चले हम आज सब चले श्याम सुंदर के सामने, राधा रानी हे श्याम सुंदर एक गलती हो गई, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगी, इस बार अवसर दे दो। उस भावना के साथ इस क्लास हम खत्म करते हैं, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। प्रश्न अलाउड है कि नहीं?